इस विषय को लेकर के जो आचार्यों ने विषय व्यक्त किया है वह मुख्य रूप से शल्य दो प्रकार का ही समझना चाहिए, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। द्रव्य शल्य है, इसको बाह्य कहना चाहिए, इसको चेतन अचेतन पदार्थ कहा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। द्रव्य शल्य चेतन है या तो अचेतन है, इसके निमित्त से चेतन और अचेतन के निमित्त से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं बहिर्मुखी परिणाम, बहिर् सुख प्राप्त करने रूप परिणाम जो उत्पन्न होते हैं और अपने त्याग तपस्या को उसी के लिए जब समर्पित किया जाता है तब वह शल्य की कोटि में आ जाता है। दीर्घ काल तक तपस्या की और तपस्या के माध्यम से तो कर्म की निर्जरा होनी चाहिए थी, कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा का कल्याण हो, परमार्थ सुख जो मोक्ष सुख कहलाता है उसकी प्राप्ति हो, इस प्रकार के परिणाम समीचीन परिणाम कहलाते हैं। किंतु संसारी प्राणी अनादिकालीन संस्कारवश वह संसार सुख को पाने का संकल्प कर लेता है तो परमार्थ सुख से वंचित होना पड़ता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, यही आत्मकल्याणार्थी का विवेक है। यदि आत्मा का ही कल्याण करना है तो केवल एक ही लक्ष्य, आत्मा का ही कल्याण करना है। इंद्रिय सुख को पाने के लिए अपने इन व्रतों को तपस्या को उसके लिए समर्पित करना क्या जरूरत है, आवश्यक है क्या? इन व्रतों के माध्यम से जो पुण्य संग्रह होता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य रहता है। जब हम भाव व्रतों के साथ द्रव्य व्रत का पालन करते हैं तो हमारा मन वचन काय शोक तो होता ही है, काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय की शोक की शोक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। यह योग अशुभ में लगे तो अशुभाश्रव, शुभ में लगे तो शुभाश्रव, तीन योग हैं, मनोयोग वचन योग काय योग, और भीतर आत्मा है शरीर में, वह काय योग से कनेक्टेड रहता है, वचन योग से भी कनेक्टेड रहता है और मनोयोग से भी कनेक्टेड रहता है। करंट जो मिलता है योग को वो आत्मा से ही मिलता है ना, आत्मशक्ति के बिना ये योग कार्यशील नहीं हो सकते, मन भी कार्यशील नहीं हो सकता, वचन भी कार्यशील नहीं हो सकता, काय भी कार्यशील नहीं हो सकता, किसके बिना? आत्मशक्ति के बिना। आत्मा की ऊर्जा निरंतर प्रवाहित है और वह योगों के द्वारा प्रवाहित होकर के वेस्ट हो रही है, ऊर्जा बह रही, वेस्ट हो रही। इस ऊर्जा को हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी। मन वचन काय के माध्यम से बहने वाली इस ऊर्जा को यदि हम सदुपयोग करेंगे मोक्ष की प्राप्ति होगी, दुरुपयोग करेंगे विषय कषायों की उपलब्धि होकर प्राणी उसको भोगता हुआ सुखी दुखी होता रहेगा। तो बात यह है कि हम अपनी ऊर्जा को किस तरह से रोकें, सदुपयोग करें, किस ओर उसको प्रवाहित करें। दो ही रास्ते हैं ऊर्जा के उपयोग के लिए। या तो इसको इंद्रिय विषयों की ओर बहा दो, या तो आत्मकल्याण के मार्ग की ओर बहा दो, पानी खेत का कुएं का है, खेत में कुआ है, पानी बहुत अच्छा है, मीठा पानी, अमृत जैसा पानी, साफ सुथरा पानी, अयोध्या पार्क का पानी। इतना मीठा पानी, इसके उपयोग के दो मार्ग हैं। इसको वहां से निकालकर गटर में भी बहाया जा सकता है, और उसको निकाल करके भगवान का अभिषेक भी किया जा सकता है, और पी करके स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जा सकता है। उस पानी का उपयोग के कर्ता व्यक्ति, उपयोग के कर्ता व्यक्ति पर डिपेंड है। यदि एक कलशा उठा करके भगवान के मस्तक पर डाल दे, कल्याण, और उसी को उठा करके यदि वहां पर गटर में बहा दे, अनर्थ है। ये तीन, मन, वचन और कार्य, ये तीन, ये हमारे गटर भी बन सकते हैं और हमारे अमृत बनने के स्रोत भी बन सकते हैं। मन के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा को बहाकर परमार्थ की सिद्धि करो तो ये पवित्र है, मंगल है, पावन है। मन मंगल है। आत्मा की ऊर्जा को वचन के उस नाले से बहा दो, वो भी पावन है। काया की चेष्टा के माध्यम से जो आत्मा की ऊर्जा खर्च हो रही है, वह भी परमार्थ की ओर खर्च हो, तो काया भी मंगल है। एक मुनि का जीवन और एक श्रावक का जीवन, वह श्रावक जो परमार्थ की ओर नहीं जा रहा है, इंद्रिय विषयों में डूब गया, रच पच गया है, उनके पास भी मन, वचन, काय तीनों है, उनके पास भी आत्मा है, आत्मा की ऊर्जा है, शक्ति है। एक मुनि के पास भी आत्मा है, मन, वचन, काय है, आत्मा की ऊर्जा है, शक्ति है। इसमें सदुपयोग कौन कर रहे हैं, दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? मुनि सदुपयोग कर रहे हैं आत्म ऊर्जा को, और श्रावक दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान, अंधकार छाया हुआ है। अंधकार छाया हुआ है इसलिए दुरुपयोग हो रहा है ना, अन्यथा आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, संसार के विषयों के प्रति अनासक्ति के भाव पैदा हो जाए, तो आत्म ऊर्जा का सदुपयोग होगा क्या दुरुपयोग? सदुपयोग होगा। जो आत्मा अपनी आत्मा के इस शक्ति को सदुपयोग ही करना चाहता है, वह आत्मा कभी भी अपने भीतर शल्य की उत्पत्ति के लिए स्थान दे नहीं सकता। जो लक्ष्यहीन बन जाता है ना, उस आत्मा में शल्य की उत्पत्ति होती है। जो लक्ष्य से च्युत होता है वहां पर शल्य की उत्पत्ति होती है। परमार्थ सुख की सिद्धि ही हमारा लक्ष्य, ये निरंतर रहे, जीवन भर रहे, जिंदगी भर रहे, ये आवश्यक है। तो फिर सब ठीक है, जो कुछ भी हम करेंगे सब ठीक है, शल्य की उत्पत्ति होगी ही नहीं। व्रत ग्रहण करे, अनुव्रत या महाव्रत, बस लक्ष्य की पूर्ति के लिए। कौन सा लक्ष्य? मोक्ष सुख की उपलब्धि हो, यही परम लक्ष्य। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो विकल्प होता है उसको तो धर्म ध्यान कहा, और इससे उल्टा संसार इंद्रिय सुख की पूर्ति के लिए त्याग तपस्या को अपनाया जाए, ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए भी यदि अपनाया जाए, तो क्या ये शल्य नहीं? ख्याति किसकी ख्याति? बाह्य ख्याति। लाभ किसका लाभ? बाह्य वस्तु का लाभ। पूजा प्रसिद्धि किसकी प्रसिद्धि? बाह्य प्रसिद्धि। ये सब बाह्य तो हैं, हमको परमार्थ सुख से वंचित तो कर रहे हैं, हमको लक्ष्य से तो वंचित कर ही रहे हैं। जो आत्मा के परिणाम हमें मोक्ष सुख से वंचित करते हैं, मोक्ष सुख से डाइवर्ट करते हैं, वे परिणाम ही शल्य की उत्पत्ति में कारणीभूत हैं। और ऐसे शल्य के संबंध में आगम के अनुसार जो समझाया है उस बात को यहां हम समझेंगे। द्रव्य शल्य का स्वरूप है भाव शल्य की उत्पत्ति में जो निमित्त भूत कर्म और नौ कर्म है उसको द्रव्य शल्य कहना चाहिए। कर्म और नौ कर्म, कर्म यानी कि ज्ञानवर्ण आदि जो आठ कर्म है ना, उनमें से एक मोहनी कर्म जो शल्य की उत्पत्ति में कारण बनता है। जीव को बाह्य आशाएं अपेक्षाएं जो उत्पन्न होती हैं वो मोहनी कर्म के निमित्त से। कभी आपको ज्ञानावरणी कर्म के कारण से शल्य उत्पन्न हुआ है?
नहीं।
ज्ञानावरणी कर्म के कारण से हमारे पास ज्ञान का क्षोभ नहीं रहता, बस इतना ही होता है, ज्ञान की शक्ति नहीं रहती। पर शल्य की उत्पत्ति का कारण ज्ञानावरणी कर्म नहीं है, दर्शनावरणी कर्म नहीं है, वेदनी कर्म नहीं है, अंतराय कर्म नहीं है, आयु कर्म नहीं है, और न ही गोत्र कर्म, न नाम कर्म। कोई भी आठ कर्म में से कोई भी कर्म शल्य की उत्पत्ति में निमित्त नहीं बनता। तो भाव शल्य की उत्पत्ति में जो कर्म और नौ कर्म कारण है, कर्म में कौन सा कर्म, ये ध्यान में रखना है। मोहनी कर्म, मोहनी कर्म के उदय से ही यह सशल्य बनता है। मोहनी कर्म के उदय के बिना सशल्य नहीं बन सकता, और शल्य सहित बनने की जो योग्यता होती है, पात्रता होती है, वो किस गुण स्थान तक होती? संभावना जो होती है वह छठे गुण स्थान तक, छठे सप्तम प्रवृत्तियात्मक छठे सप्तम गुण स्थान तक जो बाह्य विकल्प रहते हैं, उन बाह्य विकल्पों के आश्रय से जीव अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार फिर धीरे धीरे अनाचार की ओर बढ़ता है। संभावना सातवें गुणस्थान तक बाह्य विकल्पों को लेकर के जब तक यह आत्मा प्रवर्तित रहता है, बाह्य विकल्प करते 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 कर ही जाता है,
आगे भी रहेगा विकल्प, आगे भी रहेगा, आगे की गुणस्थान
विकल्प शुद्धोपयोग है। निर्वृत्ति में शुद्धोपयोग माना है, वहां पर निर्विकल्प दशा है, अंतरंग विकल्प में बहिरंग विकल्प नहीं है। और छठे सप्तम गुणस्थान जो प्रवृत्त्यात्मक गुणस्थान है, वहां पर बाह्य वस्तुओं का विकल्प रहता ही है। वहां शुद्धोपयोग नहीं, वहां शुभोपयोग है। प्रवृत्ति में कौन सा उपयोग? शुभोपयोग। निर्वृत्ति में कौन सा उपयोग? शुद्धोपयोग। निर्वृत्ति यानी सामायिक अवस्था, ध्यान अवस्था, और शुभोपयोग यानी प्रवृत्ति अवस्था, धर्म ध्यान अवस्था। धर्म ध्यान के काल में आत्मा आत्मचिंतन करता करता बहिर्चिंतन भी कर लेता, और बहिर्चिंतन करता करता बहिर्मुखी ही हो जाए तो फिर शल्य की ओर बढ़ता है। तो संभावना बनती है शुभोपयोग में, शुभोपयोग से अशुभोपयोग की ओर बढ़ता है, लौटता है। अभी तो अशुभोपयोग से शुभोपयोग की ओर आया था, अब शुभोपयोग से पुनः अशुभोपयोग की यात्रा होगी। अशुभोपयोग की ओर यात्रा जब करता है, तब वह अंतरात्मा की दृष्टि को लेकर के रहता नहीं। अंतरात्मा की दृष्टि में कमी आती 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 जाती है, और वो उसका मुख ही चेंज हो जाता है। पूर्व की ओर जाना था, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, अब चलना शेष है। एक एक कदम बढ़ने लग जाए तो फिर मुख करके खड़े होने की, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े होने की अपेक्षा बन गई, तो यह अतिक्रम हुआ और उसमें प्रगाढ़ता हो गई, परिणामों में प्रगाढ़ता हो गई, तो व्यतिक्रम हुआ और एक कदम बढ़ा लिया पश्चिम की ओर, अतिचार हो गया, और बाद बार बार कदम उसी दिशा में उठने लगे, अनाचार हो गया। अब ध्यान नहीं आया कि इस ओर मुझे नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान नहीं आया तो अंतर्मुहूर्त पर्याप्त है, गुणस्थान से नीचे गिरने के लिए। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार तक पहुंच सकता, और उसके पास पतन, उसके बाद पतन होता। गुणस्थान पतन हो गया तो शुभोपयोग भी छूट गया, क्योंकि डायरेक्ट शल्य की ओर बढ़ रहा है ना। गिरते समय कैसा गिरेगा? सीधा भी गिर सकता है, छठे से पहले गुणस्थान में भी डायरेक्ट गिर सकता है, पंचम से पहले गुणस्थान में डायरेक्ट गिर सकता है, चौथे से डायरेक्ट गिर सकता है पहले में। पहले में गिरने वाला, डायरेक्ट गिरने वाला सशल्य होकर के गिरता है। शुभोपयोग अगर छूट रहा है तो शल्य सहित हो ही रहा, यह समझना चाहिए। और शुभोपयोग प्रारंभ होता है कहां से? चौथे से। चौथे से कहां तक? सप्तम तक। सप्तम के प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक शुभोपयोग है, और उसके पश्चात ध्यान अवस्था है। तो सप्तम के निर्वृत्त्यात्मक अवस्था से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थानों में बारहवें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग निर्विकल्प रूप है, शुभोपयोग विकल्प सहित है। इसमें शुभ विकल्प भी हो सकते हैं, धर्म ध्यान के विकल्प भी हो सकते हैं और शल के विकल्प भी हो सकते हैं, लेकिन यहां रहते रहते शल्य नहीं होंगे, शल्य की भूमिका बनेगी। शल्य छठे गुण स्थान में ही उत्पन्न हो गए ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, शल्य नहीं थी, वो छठे सप्तम गुण स्थान से गिरे नहीं थे, उनको केवल विकल्प था। कैसा विकल्प? जो धर्म ध्यान के साथ बार बार आता जाता था, बाहुबली भगवान ऐसे कह रहे थे क्या, ये धरती मेरी, भरत की जगह में बैठे हैं, बस ये हो सकता है? ये तो हमको भी हो रहा है, हम यहाँ पर बैठे हैं, ये कैसा है हमको मालूम है, लेकिन इस विकल्प को लेकर के हम शुक्ल ध्यान में जाना चाहते हैं तो असंभव है। धर्म ध्यान में रह सकते हैं बहुत समय तक, सालों भर रह सकते हैं हम धर्म ध्यान के साथ, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये शल्य की कोटि में नहीं आएगा, ये विकल्प की कोटि में आएगा। ये कौन सा विकल्प? तो धर्म ध्यान के साथ होने वाला विकल्प, और धर्म ध्यान की भूमिका से जब तक ऊपर नहीं उठते, उन विकल्पों से भी हम जब तक ऊपर नहीं उठते तब तक शुक्ल ध्यान नहीं होने वाला। शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग रूप है, वो निर्विकल्प दशा का नाम है, वहां एक भी विकल्प नहीं। धर्म ध्यान के काल में उत्पन्न होने वाले जितने विकल्प है ना, उन विकल्पों को समाप्त करके शुक्ल ध्यान को पाता, उसका नाम शुद्धोपयोग। इसीलिए लगा, धर्म ध्यान की भूमिका से ऊपर नहीं उठ पाए, वही विकल्प बने रहे। देखो ये कैसा विकल्प, हम यहां बैठे हैं, ये किसका है? किसकी जगह है? पता चल गया फलाने की जगह, तो सामायिक में बैठ गए। आपको इस जगह केवल ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ध्यान में बार बार जगह ही आने लग जाए कि उनकी जगह है, ये उनकी जगह, किसकी जगह, वो, ऐसा बार बार आने लग जाए तो हमको निर्विकल्पता नहीं आएगी, पर धर्म ध्यान का भंग भी नहीं होगा। ये मेरी है, ये तो बचाने मेरी है कहने के लिए, क्योंकि संपूर्ण त्याग हो गया, पर ये परका है, ये भी विकल्प शुक्ल ध्यान के प्रवेश के लिए बाधा पहुंचाएगा, प्रवेश करने नहीं देगा। धर्म ध्यान में रहो, आप सालों भर रह सकते हैं, जीवन भर रह सकते हैं, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है कहते हुए रहो। ये उनका है कहना शल्य नहीं है, ये धर्म ध्यान जनित विकल्प है। शल्य में तो पाने का कोशिश करता है, और कैसा पाना, हमारा जो त्याग तपस्या है इसके फल स्वरूप ये मुझे चाहिए, ये इंद्रिय विषय मुझे आवश्यक, ऐसा विकल्प, ये अशुभ विकल्प है, वो शुभ विकल्प है, वो धर्म ध्यान वाला है, और ये वेश्या की ओर, अशुभोपयोग की ओर, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान की ओर बढ़ाने वाला विकल्प है। एक विकल्प को शल्य भी कहा और एक विकल्प को निश्शल्य भी कहा। बाहुबली भगवान निश्शल्य थे, सशल्य नहीं थे, परंतु सविकल्प थे, बाह्य विकल्प उनको था। अगर बाहुबली भगवान को ऐसा भाव आता, ये जो भरत की भूमि है मेरी बन जाएगी, पुनः इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति हो गई, तो फिर सशल्य होते, फिर गुणस्थान से च्युत होते, फिर नीचे आते।
मोक्ष का निदान, मोक्ष का जो अपना टारगेट किया था उससे च्युत नहीं हुआ।
टारगेट मोक्ष है ना,
वो रख के ही उधर चल रहा।
टारगेट अगर मोक्ष, मोक्ष यदि है तो ये इंद्रिय विषय तो टारगेट नहीं है, ये गेट बाहर है, हमारे गेट के भीतर नहीं है। शंका यानी प्रश्न, शंका यानी संशय, जो पूछना चाहते हैं ऐसा है क्या वैसा है, ये संशय है। इस संशय को प्रश्न भी कहते हैं, शंका भी कहते हैं। शल्य अलग बात है, कह रहे ना, शल्य परमार्थ से वंचित रखता है जीव, ऐसा विकल्प जो होता है उसको शल्य कहते हैं।
महाराज जी नमस्ते। शल्य है आत्मा में शुरू से उत्पन्न होता हुआ है, आत्मा में शुरू से उत्पन्न है, जैसे कि मिथ्या है, मौनिक कर्म है, तो इसको निकालने का तरीका कैसा होना चाहिए, यानी कि चुभा हुआ आत्मा में जो काटा है उसको साफ निकालना चाहिए, तभी वो शल्य खत्म हो जाएगा, इसी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
टारगेट चेंज करो, बस इतना ही है और कुछ नहीं, एक ही शब्द में उत्तर। टारगेट चेंज हो गया तो निश्चल हो ही गया। टारगेट क्या, इंद्रिय सुख टारगेट है या मोक्ष? टारगेट में क्या रखा ये महत्वपूर्ण। टारगेट में अगर मोक्ष है तो छल्य शल्य आपको छू नहीं सकती, और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपने सब कुछ परिश्रम उठा लिया, व्रत ले लिया, सम्यक दर्शन ले लिया, प्रतिमा ले ली, सब कुछ ले लिया, और इससे जो पुण्य संग्रह हुआ उस पुण्य का फल मांगने के भाव होने लगे इंद्रिय विषय को, इस पुण्य के फल से इंद्रिय विषय प्राप्त हो, तो टारगेट चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं, व्रतों का फल मोक्ष है, मोक्ष ही मांगो, टारगेट को चेंज मत करो। मोक्ष को मांग रहे हैं तो शल्य होगा ही नहीं, मांगते हुए भी नहीं होगा।
महाराज जी, सशल्य पहले से तीसरे घोषणा था और निशल्य चौथे से सप्तम घोषणा होता है क्या?
सशल्य पहले से तीसरे गुणस्थान तक,
निशल्य चौथे से सातवें।
हाँ, चौथे से सातवें गुणस्थान तक, परंतु निश्चल्य वृत्ति ऐसा जो कहा, वो वृत्तियों को शल्य नहीं रहना चाहिए, ये उपदेश है, क्योंकि इंद्रिय सुख को त्याग करता है वो, करता है कि नहीं? अनुवृत्ति एक देश पंचेंद्रिय विषयों को त्याग करता है, महावृत्ति पूर्णतः पंचेंद्रिय विषयों को त्याग करते हैं, और जितना त्याग करते हैं उतने प्रमाण में इनके व्रत भी आए हुए हैं जीवन में, तो इन व्रतों के आने से उनके मन वचन काय तीनों सदा पाप प्रवृत्ति से मुक्त रहते हैं। पाप प्रवृत्ति से मुक्त रहने से पुण्य का आश्रय निरंतर होता है, और वह भी पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य रहता है, असली पुण्य रहता है, नकली नहीं, मिश्रित नहीं, और उस पुण्य के फल को मांगना चाहिए क्या? पुण्य जो संग्रहित हो गया वह पुण्यानुबंधी पुण्य है, और उसका फल मांगने के भाव आ गए तो पुण्य दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, जो पुण्यानुबंधी प्योर पुण्य था वो प्रदूषित हो जाएगा। जब आप मांग शुरू करते हैं टारगेट चेंज करके, परमार्थ का मार्ग टारगेट चेंज हो गया और इंद्रिय विषयों का विषयों की इच्छा करने लगे, तो आपका पुण्य जो होता है ना वो पापानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो पुण्य दूषित हो गया, वह पुण्य आपको परंपरा से मोक्ष का कारण बनने वाला था। अब इच्छा की खटाई को आपने डाल दिया, शल्य की खटाई को उसमें छोड़ दिया, केवल पुण्य में वो तो फट गया। अब उससे आप मिश्री मिलाकर दुग्ध का पान नहीं कर सकते। अब या तो दही खाओ या तो छाछ पियो। अब खट्टी वस्तु मिलेगी आपको, मीठी वस्तु पी नहीं सकेंगी। दूध की सुरक्षा करो, उसमें खटाई मत डालो। दूध पुण्यानुबंधी पुण्य है और शल्य एक बूंद है विकल्प का, जो बहुत ही खट्टा, और वह दूध में गिर गया तो दूध सारा फट जाएगा। तपस्या व्यर्थ हो जाएगी,
जिंदगी
व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए शल्य से बचना, कभी भी भूल करके भी स्वप्न में भी व्रतों के फल को इंद्रिय विषय के रूप में इच्छा नहीं करना, ऐसा रखना, तो जीवन सार्थक, व्रत सार्थक। व्रत दूध के समान है और उसमें खटाई डाल देंगे तो शल्य सशल्य हो गए, तो निःशल्यो व्रति, ऐसा जो उपदेश है, व्रतों को शल्य सहित मत बनाओ, ये उपदेश है। व्रतों को लेने के बाद अपना टारगेट चेंज मत बनो करो, ये उपदेश। टारगेट अगर चेंज हो गया तुम्हारे व्रत सभी दूषित हो जाएंगे, ऐसा उपदेश।
बदले की भावना लेके कोई मन में आता है वो सल में आएगा, तो ये राग द्वेष के कारण बदले की भावना जो आती है मन में कोई, तो वो सल में आएगा
नहीं, वो राग द्वेष है, वो प्रत्याख्यान और निकर्म के उदय से भी हो सकते हैं। चौथे गुणस्थान में भरत बाहुबली क्षायक समय दृष्टि लड़े कि नहीं लड़े, शल्य था क्या? नहीं लड़े, परस्पर में लड़े, पर क्या प्राप्त करने के लिए? एक स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, धरती का स्वामित्व, मेरा तेरा ये झगड़ा चल रहा है, मैं चक्रवर्ती, तो ये कहते हैं तुम चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती, लेकिन मेरी धरती पर क्या अधिकार? ये राग द्वेष चौथे वनस्थान में अग्रत समय दृष्टि जीव को भी संभव, पर टारगेट दोनों का क्या है? वहां विचार करो, टारगेट परमार्थ है या इंद्रिय विषय? दोनों तद्भव मोक्षगामी, टारगेट बदल कैसे सकता है? सोचो, टारगेट से कभी चुप नहीं हो सकते ये दोनों, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि, ये सशल्य बन ही नहीं सकते। माया मिथ्या निदान, ये तीन शल्य की उत्पत्ति क्षायिक समय दृष्टि में कैसे संभव? क्षायिक समय दृष्टि क्या चौथे से नीचे गिरता है?
नहीं,
चौथे गुण स्थान से। तो शल्य की उत्पत्ति असंभव, और ये दोनों ही भव्यात्मा सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित है, सर्वार्थ सिद्धि विमान से आए, और उसी भाव से मोक्ष जाना इनका नियोग है। मोक्ष नियम से जाएंगे। शल हो ही नहीं सकते। माया मिथ्या निदान नामक ये तीनों शल्य क्षणिक सम्यक दृष्टि में कैसे उत्पन्न हो सकते, क्योंकि शल्य की उत्पत्ति के लिए कर्म का उदय आवश्यक है कि नहीं है? तो कर्म तो सातों नहीं है वहां, जो शल्य की उत्पत्ति के कारणीभूत कर्म है वो सात कर्म है, दर्शन मोनि के तीन, उसमें से एक को छोड़ो, सम्यक प्रकृति को देशघाती है वो, छह तो है सर्वघाती। तो शल की उत्पत्ति में कारणीभूत कर्म है कहां? नहीं है तो शल्य होंगे ही नहीं, हो उनका तो क्षय किया उन्होंने। समझ में आ रहा है ना? हम लोग शल्य बन सकते हैं क्योंकि हमारी सत्ता में सातों प्रकृतियां हैं, उन्होंने तो क्षय किया है, परंतु क्षय करने के बाद भी ऐसा विकल्प आता है कि नहीं कि ये मेरी धरती है, ये मेरी धरती है, आता है। लेकिन ये ऐसा आता हुआ भी क्या वो टारगेट से वंचित हो सकते हैं? हाँ, शल्य की उत्पत्ति उस जीव को उत्पन्न होती है जो टारगेट से वंचित होकर के पर वस्तुओं में ममत्व भाव करने लगता है। अब वो कोई भी हो, भाई भी हो या अपने परिवार की धन संपत्ति हो, परिवार हो, पुत्र हो, पशु हो, किसी को भी लेकर के वो हो सकता है शरीर। हमारी संसारी जीवों को तो हम बता रहे हैं ना, आप अगर चौथे गुणस्थान में है मान लो, सत्ता में तो सातों प्रकृतियां पड़ी हुई है, है? तो सशल बनने की पात्रता तो आप में है, लेकिन बने ये नियम है क्या? नहीं है। टारगेट चेंज करोगे तो बनोगे, ये मेन पॉइंट। आपका टारगेट चेंज हो जाता है और फिर टारगेट चेंज करके आप विकल्प करने लगते हैं तो शल्य की ओर अवश्य बढ़ेंगे। टारगेट चेंज नहीं करना, टारगेट को इतना मजबूत रखो कि हम गुणस्थान से गिर न सके। और गुणस्थान से गिरता कौन है? टारगेट जिनका चेंज होता है वही गुणस्थान से गिरता है। यानी क्या टारगेट से चेंज? यानी क्या? ये जो व्रत है, इन व्रतों का जो पुण्य है इकट्ठा हुआ है, उससे इंद्रिय सुख मिले, ये टारगेट चेंज कहलाता है। अभी तक क्या था? इन व्रतों से, इस पुण्य से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ये पुण्य मोक्ष सुख की प्राप्ति में सहयोगी बने,
भौतिक सुख,
ऐसा परिणाम था। तो ये सही टारगेट है, परंतु आप भौतिक सुख के लिए अगर उपयोग उसका करते हैं, व्रतों का और तपस्या का पुण्य का फल आप भौतिक सुख चाहने लगते हैं तो फिर गए, चौथा गुणस्थान भी चला गया। पहले में आ गए निदान बंदिशी को, कहते निदान शल्य, भाव शल्य के तीन भेदों में से एक भेद है निदान शल्य।
नमस्ते महाराज, सब उपाय एक ही है, सब त्याग कर मुनि बनना।
नहीं, श्रावक बनने पर भी है इतना, आप अति ऊंचा भी मत चढ़ो, नीचे भी कुछ व्यवस्था है।
भौतिक सुख में ये शक्य नहीं हुआ, भौतिक सुख पाना के हम तुम टारगेट बनता है तो मोक्ष कैसा जाएगा?
नहीं, टारगेट मोक्ष सुख का टारगेट बना करके व्रत पालन करते समय ऐसा परिणाम मत करो कि भौतिक सुख पाना है मुझे। ऐसे भी भाव होते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं ना, जीव को ऐसे भी परिणाम होते हैं, कोई समस्या आ गई तो समस्या निवारण के लिए कोई रास्ता कोई बचता नहीं, तो उस समय ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि हमारा जो व्रत है पुण्य है, इसके फल स्वरूप ऐसी शक्ति प्राप्त हो, जैसे कि मैं एक चक्रवर्ती बनूं, जैसे कि मैं एक उस शक्ति वाला बनो जिस शक्ति को पा करके मैं ये काम कर सकता हूँ, भौतिक काम। व्रत आदि भौतिक काम को पूर्ण करने के लिए नहीं होते, त्याग तपस्या आदि मोक्ष की प्राप्ति के लिए होते।
महाराज जी, शल्य का पीरियड उतना भी फिक्स होता है क्या? शल्य का कितने पीरियड तक चलेगा वो उतना भी फिक्स होता है क्या?
जब तक वो नहीं मिलता है ना, तब तक चलता ही रहता है। इच्छित वस्तु, जो संकल्पित वस्तु है, उसकी प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक शल्य चुपता रहता है। एक उदाहरण दिया ना, मनोती करके आ गए, देवता की पूजा की, उस पूजा का फल मांग रहे हैं। पूजा तो एक धर्म की क्रिया हो गई, पर धर्म की क्रिया नहीं कहलाई वो, क्योंकि भौतिक सुख पाने के लिए धर्म किया, तो धर्म है नहीं, धर्म की कोटि में वो क्रिया नहीं आई, वो मिथ्या क्रिया है। दिखने में तो धर्म की क्रिया जैसी लग रही पूजा, पर वो मिथ्या पूजा, मिथ्या तो की कोटि में आएगी। और टारगेट सही रख करके कर रहा है तो धर्म की कोटि में कहलाएगा, टारगेट बदल गया तो अधर्म की कोटि में वो क्रिया आएगी। तो उस क्रिया से और उस क्रिया के कारण से जो पुण्य बंद हुआ उसका फल मांग रहा है ना, ये फल की मांग हमें सशल्य बनाती है। सशल्य इसलिए बनाती है कि मांग करके तो हम आए हैं, वो मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, प्रतीक्षा में रहेगा क्या नहीं, वो बार बार आता जा रहा है, आता जाता रहेगा विकल्प, बार बार आना जाना ये विकल्प का रहेगा।
अगर इस चीज को हम इस तरह से समझना चाहें, समझे हमको कोई कष्ट है और हमारी कोई समस्या का सॉल्यूशन हो गया, नियम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वो हमारी समस्या सॉल्व हो गई, दूर हो गई। हम तो ये समझेंगे नियम सागर जी महाराज की कृपा से हमारे
सब नहीं, एक ही बात सब ने सोचो, कृपा किसी की भी हो, सिद्ध परमेश्वर की कृपा से हमारा भला होना है तो क्यों ना हो जाएगा, किंतु टारगेट चेंज नहीं होना, हमको मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए हमने ये पूजा की, ये विधान किया, ये व्रत किया, ये अनुव्रत किया, ये महाव्रत किया, ये परिणाम निरंतर बने रहना चाहिए। इसके फल को तुम भौतिक सुख मांगोगे तब चुत होना संभव। अब आशीर्वाद हो या ना हो किसी का, आशीर्वाद हो तो भी टारगेट सही चाहिए, और आशीर्वाद हो, टारगेट गलत है तो आशीर्वाद भी दुरुपयोग हो गया ना। आशीर्वाद एक अमृत है, उसको गटर में बहना है, शल्य गटर है, उसमें बहाना है क्या? नहीं। परमार्थ सुख को पाने वाले जीव को ये विश्वास रहता है, क्या रहता है देखो, परमार्थ सुख के लिए ही, परमार्थ सुख को ही टारगेट बना करके आत्म कल्याण करने वाला जीव क्या पुण्य का बंद नहीं करता? करता है। कैसा पुण्य का बंद करता है बोलो ना, कौन सा पुण्य? शांति से, शांति से पुण्य का बंद करता है, शांति से यानी निर्दोष पुण्य को बंद करता है। उसका फल क्या? उसका फल परंपरा से मोक्ष ही है। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो जो पुण्य कमाता है वह पुण्य कभी भी संसार का कारण नहीं बनता, परंपरा से मोक्ष का ही कारण बनता है। उसको वैराग्य होगा उस पुण्य के वजह से, और यदि उसी पुण्य को सशल्य बनकर शल्य में बहाएंगे तो पुण्य तो रहेगा और उस पुण्य का फल भी मिलेगा। चक्रवर्ती बनना चाहो चक्रवर्ती भी बन जाएगा। सोहम चक्रवर्ती, उनका क्या हो गया? महावृद्धि मुनि थे, त्याग तपस्या की और उसके फल को मांग बैठे, निदान शल्य किया, निदान बंद किया और गुणस्थान से चित हो गए। पुण्य तो खूब इकट्ठा किया था, उतना ही पुण्य है, लेकिन खटाई डाली उसमें। अब किस काम की? वो मोक्ष सिद्धि के काम में आने वाला नहीं। अब वह पुण्य तो है लेकिन वैराग्य की उत्पत्ति में कारण नहीं बना। चक्रवर्ती तो बन गया, हो मैं चक्रवर्ती बनूं ऐसा संकल्प किया, ऐसा राजा बनूं जो राजा एकदम शक्तिशाली होता है, सबको हराता है, सबको जीत लेता है, ऐसा निदान बंद किया और चक्रवर्ती बन गए हो। आठवीं चक्रवर्ती बन गए, शुभम चक्रवर्ती, चक्रवर्ती पद मिला, निर्दोष पुण्य नहीं था, वैराग्य की उत्पत्ति में कारण नहीं बना परंतु दुर्गति का कारण बन गया। जो निदान बंद का पुण्य होता है ना, वो निदान बंद पुण्य वाले कोई भी आज तक सदगति में नहीं गए, न मोक्ष गए, न स्वर्ग गए, नरक गए। ऐसे दो चक्रवर्ती का हुआ है, एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और एक शुभम चक्रवर्ती, दो चक्रवर्तियों का ऐसा हुआ है। और जो चक्रवर्ती शेष थे वो सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्यार्जन किया था उनको बराबर वैराग्य हो गए, इंद्रिय विषयों से विरक्ति हो गई। ये सब भाव है, परिणाम है, हमारे भावों के कारण से ही उस पुण्य में सातिशयता आती है, हमारे भावों के कारण से ही निरतिशयता आती है। और वह उद्गल कर्म भी हमारे भाव जैसे थे पहले वैसे ही फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उस जीव को वैराग्य होगा ही नहीं। शुभम चक्रवर्ती चाहे हजार प्रयत्न कर ले, वैराग्य के भाव नहीं जगेंगे। पुण्य और पुण्य के फल में अनासक्ति के भाव जगेंगे नहीं, क्योंकि पहले आसक्ति जग गई थी तो फिर अनासक्ति कैसे? वो कहेगा तुमने आसक्ति का फल मांगा है तो ये ले लो, अनासक्त अब नहीं हो सकते। तो इंद्रिय विषयों की आशा में ही उसका मरण होता है। ऐसा ही हुआ है क्या? नहीं, शुभम चक्रवर्ती का चरित्र पढ़ा है, इंद्रिय विषयों की मांग को रखते रखते ही, करते करते ही उनका मरण हुआ। और इसलिए नरकायु का बंद हो गया। और परिणाम कैसे हो गए देखो, नमोकार मंत्र जल पर लिख करके उसके ऊपर भी पैर देने के परिणाम हो गए। देखो तो सही कैसे कैसे हो सकते।
नारद जी नमस्ते, अब नमोकार मंत्र का भी विषय चल रहा है बोलकर एक प्रश्न पूछता हूँ। नमोकार मंत्र में सभी कुछ अच्छे कहा है, 184,000 उसमें सूत्र भी मंत्र भी बताया, लेकिन श्रावकों को और श्राविकों को नमोकार मंत्र के मंत्र में कोई मांग क्यों नहीं रखा? कोई उसमें मांग नहीं है, सबको नमस्तु उत्तम शरणम ये सब कुछ है, सब पवित्र पवित्र बताया है, लेकिन मांग की पूर्ति उसमें नहीं है।
नहीं,
मांग की पूर्ति रखने से क्या होता था और नहीं करने से क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
नमोकार मंत्र मंगल मंत्र है, उसमें रहने वाले सभी मंगल हैं। मंगल है परिग्रह रहित, कर्म रहित, गुणों से सहित परमिष्टि। परमिष्टि मंगल होने से मंत्र भी मंगल। मंत्र तो उनका नाम है, परमिष्टियों का नाम मंगल मंत्र। और इस मंगल के सहारे से जीव मंगल बनना चाहेगा या अमंगल? मंगल ही बनना चाहेगा। तो मांग को रखेंगे, भौतिक सुख की मांग को रखेंगे तो अमंगल बन जाएगा जीव। तो मंगल के सहारे से, आश्रय से, जाप से, जहां हमको मंगल बनना चाहिए था, हमने उसको दुरुपयोग में लिया, अमंगल के कार्य में ले लिया, उससे मांग करने लगे। तो उस नमोकार मंत्र को जपते जपते आप इंद्रिय विषयों का मांग भी करेंगे तो हानि तो आपका होना है, मंत्र का और मंत्र में रहने वालों की हानि नहीं होगी। वो क्या करेंगे, हमने आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद का आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो हम क्या करें, हमारा अनिष्ट होगा क्या?
नहीं,
नहीं। पंच परमेष्ठी का कुछ अनिष्ट नहीं होगा। नमोकार मंत्र में कोई भी ऐसे अपेक्षा करने के लिए उपदेश नहीं दिया। नमोकार मंत्र तो केवल परमेष्ठियों के नामों का मंत्र है। अरहंत ये नाम है, सिद्ध नाम है, आचार्य उपाध्याय साधु ये नाम, मंगल नाम है, ये मंगलमय नाम है। नाम भी मंगल और उसमें रहने वाली आत्माएं वो भी मंगल। हम उसका सहारा इसलिए करते हैं हम भी उनके जैसे मंगल बने। नमोकार मंत्र हम अपने जीवन में क्यों है, उसकी आवश्यकता क्यों है? अपने आत्मा को मंगल बनाने के लिए आवश्यक है। इंद्रिय विषयों के मांग के लिए नमोकार मंत्र नहीं, इंद्रिय विषय तो स्वतः मिलते हैं, स्वतः मिलते हैं। मंगल का जाप करने से स्वतः इंद्रिय विषय मिलेंगे, अपेक्षा करने की जरूरत क्या? अपेक्षा करना तो बहुत अंधकार है, अज्ञान है, अज्ञानता है, नुकसान है। क्या नुकसान है? तो जो जाप करते समय आपने पुण्य बांधा था, साथी से पुण्य बांध लिया था, अब मांग करने लगे तो नुकसान तो हो रहा है कि नहीं? दूध दही बन रहा है कि नहीं? ये तो नुकसान है। दही क्यों बना रहे हैं? दूध है, ये दूध भी इंद्रिय विषय देगा। जो कहते हैं सुरक्षित ले जाओ उसको, सातिशय पुण्य को निरतिशय बना करके मत ले जाना। सातिशय पुण्य को सातिशय ही रहने दो और साथ आने वाला, वो भी इंद्रिय सुख ही देने वाला है और उससे ज्यादा उत्कृष्ट इंद्रिय सुख को देने वाला है। निरतिशय बन करके उसको खट्टा बना करके खाने की अपेक्षा मीठा बना करके, क्वांटिटी भी अधिक रहेगी, क्वालिटी भी अधिक रहेगी इंद्रिय सुख की, वो चाहिए। क्या नुकसान चाहिए? वहां क्वांटिटी भी घट जाती है, क्वालिटी भी घट जाती है और उसको भोगते समय रोते रोते दुर्गति में भी जाना पड़ता है, दुर्गति का कारण बनता है। ऐसे को क्यों हम मांगे? व्रत आदि का पालन करके, पंच परमेष्ठी का जाप करके मांग की क्या जरूरत है? बहुत बड़ा नुकसान है। आज तक जितने भी चक्रवर्ती बने और मोक्ष ही गए, वो मांग के बिना ही चक्रवर्ती बने थे कि मांग से बने थे? और मांग से जो बने थे उनका क्या हुआ? वो नरक में। और मांग के बिना जो चक्रवर्ती बने तो वो क्या इंद्रिय सुख को नहीं भोगे थे? इंद्रिय सुख को भोग करके तो मोक्ष गए हैं ना। तो ये नुकसान भी पता चला और लाभ भी पता चला। लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए अपने को साधना है। नमोकार मंत्र में कोई किसी प्रकार के मांग के लिए जगह नहीं,
भगवान देते नहीं कुछ, भगवान कुछ देते ही नहीं,
भगवान क्या देंगे, उनके पास है रखा हुआ है, गोडाउन है क्या उनके पास देने के लिए, गोडाउन में कुछ भरा हुआ है, ऐसा है क्या
मांग रखने के कुछ,
मांगने वाले भी देखो ना, जैसे हमारे पास गोडाउन हो मांगने के लिए। यदि हम देने लग जाए तो हमारे पास गोडावन भी जरूरी है ना,
इसलिए जानबूझकर मांग नहीं रखा।
और यदि हम देने लग जाए और अपने पास गोडावन आवश्यक है तो गोडावन तो कई लोग मांगने के लिए आएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा।
लोग आपके आशीर्वाद को ही गोडावन समझ के चलते मांगते हैं।
हाँ, आशीर्वाद में जादू है ना, इसलिए मांगते हैं।
ऐसा समझते
हैं। बिल्कुल, आशीर्वाद से सब कुछ होता है, लेकिन भौतिक सुख की मांग आपको नहीं करना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव ऑटोमेटिक सुखी होता है, मांगने की जरूरत नहीं। मांगने का एक्स्ट्रा प्रयास क्यों कर रहे हैं आप, अपने आप मिलने वाला है, और व्यर्थ का प्रयास आपाधापी।
पांच मिनट बसू।